बाजय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य। सब लोग जो बैठे हैं नीचे कम से कम घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जो ऊपर बैठे हैं कम से कम हाथ जोड़ें हैं। जो बैठे हैं नीचे बैठे हैं घुटनों पर बैठ के और माथे को जमीन में लगाइए। जब तक जयकारा होता है जो ऊपर बैठे हैं कम से कम हाथ जोड़िए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य। अष्टोत्तर सत्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनदाई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वै वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद आया, स्कंद आठ अध्याय आठ, और अध्याय का नाम है क्षीर सागर का मंथन, और श्लोक संख्या 21। मेरे पीछे बोलिए, धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम्, त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारण, वीर्यम न पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतम्, नहि द्वितीयो गुण संग वर्जितः, धर्मः क्वचित् तत्र न भूत सौहृदम्, त्यागः क्वचित् तत्र न मुक्ति कारणम्, वीर्यम न पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतम्, नहि द्वितीयो गुण संग वर्जितः, धर्मः क्वचित् तत्र न भूत सौहृदम्, त्यागः क्वचित् तत्र न मुक्ति कारणम्, वीर्यम न पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतम्, नहि द्वितीयो गुण संग वर्जितः। बोलिए, माता जी शब्दार्थ बोलिए, धर्म धर्म क्वचित, भले ही पूरा ज्ञान क्यों ना हो, तत्र वहां, न नहीं भूत सौहृदम्, अन्य जीवों के साथ मित्रता, त्याग त्याग, क्वचित किसी के पास भले ही हो, तत्र वहां, न नहीं मुक्ति कारणम्, मुक्ति का कारण, वीर्यम बल, न नहीं पुंसः किसी पुरुष का, अस्ति हो सकता है, अजवेग निष्कृतम् काल की शक्ति से छुटकारा नहीं है, न ना तो ही निस्संदेह द्वितीय दूसरा गुण संग वर्जित, प्रकृति के गुणों के कलमस से पूरी तरह मुक्त। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी वह समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता। किसी में चाहे वह देवता हो या मनुष्य त्याग हो सकता है, किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं होता। भले ही किसी में महान बल क्यों न हो, फिर भी वह सनातन काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो, फिर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे श्लोक, है ना। तो ये जो श्लोक है कौन कह रहा है, कौन बताएगा ये श्लोक कौन कह रहा है? कितने लोग डेली सुनते हैं क्लास, हाथ उठाइए। बहुत थोड़े। चलो जो लोग डेली सुनते हैं कम से कम वो तो बताएं कथा क्रम क्या है। लक्ष्मी जी, हाँ तो लक्ष्मी जी का क्या, लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, हाँ धन्यवाद, लक्ष्मी जी बोल रही हैं। और लक्ष्मी जी बोल रही हैं तो किससे बोल रही हैं, किसी से नहीं बोल रही, अपने 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 से बोल रहे हैं। लक्ष्मी जी अपने से बोल रही हैं। कथाक्रम ये है कि समुद्र मंथन हो रहा है और समुद्र मंथन में भगवान विष्णु की आज्ञा से देवता लोग स्वयं जाते हैं असुरों के पास और संधि प्रस्ताव करते हैं कि हमारा जो है आपके साथ में कुछ संधि प्रस्ताव है, हम लोग मिलकर के क्षीर समुद्र का मंथन करेंगे, अमृत जो मिलेगा वो हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे। तो ये संधि प्रस्ताव था। तो भगवान ने देवताओं को ऐसी आज्ञा दी और साथ साथ नीति भी समझाई। नीति समझाई, क्या समझाया, कि जब तक अमृत ना निकले तब तक जो भी निकले जो भी वस्तु निकले, जो भी रत्न निकले, तो उसमें जो है झगड़ा नहीं करना। किसी को मिल गया तो मिल गया, फिर उसमें झगड़ा नहीं, तुमने क्यों लिया, हमें चाहिए क्यों, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य अमृत प्राप्त करने का, तो अमृत जब तक ना निकले तब तक जो है तुम्हें कुछ किसी प्रकार से जो है झगड़ा नहीं करना। तो जो जो भी रत्न निकलते हैं, जैसे उच्च सरवा घोड़ा निकला तो बलि महाराज ने ले लिया, रावत हाथी निकला तो इंद्र ने ले लिया, तो ऐसे अलग अलग रत्न निकले और जिसने ले लिया सो ले लिया, फिर कोई झगड़ा नहीं, आगे फिर से मंथन शुरू कर देते हैं। जो भी रत्न निकलता है देखते हैं बड़ा इसमें गुण है, बड़ा अच्छी चीज है, लेकिन किसी ने ले लिया तो ले लिया। तो ये भगवान की नीति है। और अब लक्ष्मी जी निकली, अब लक्ष्मी जी निकली तो सब लोग उनको लेना चाहते हैं, सब लोग उनको लेना चाहते हैं और झगड़ा भी नहीं करना है, तो फिर लक्ष्मी जी को ही अवसर दिया कि वे स्वयं अपना वर चुने, उसे कहते हैं स्वयंवर। जब कन्या को अवसर दिया जाता है कि इतनी सभा में किसी को भी जो है अपना वर अपनी इच्छा से चुने, तो स्वयंवर कहलाता है कि कन्या के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं होता है, वो अपनी इच्छा से वर चुने। तो लक्ष्मी जी को अवसर दिया गया कि वे अपनी इच्छा से वर चुने। अब लक्ष्मी जी तो स्वयं मतलब भगवान की ही जो है नित्य संगनी है, नित्य संगनी है, लेकिन अब जो है वे वैसे भी जो है दूसरे प्रकार से भी अपना वर चुन रही हैं कि किसमें क्या गुण है, किसमें क्या गुण है, उस तरह से भी अगर वो चुनाव करें, उसे कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब बिल्कुल शुरू से ही अगर विचार करें कि मान लो अपने पति को भूल गए कि वो उनके पति विष्णु हैं, तो गुणों पर विचार करके वो जो है अगर पति का चुनाव करेंगी तो भी क्या निष्कर्ष निकालेंगे, यही मेरे पति हैं, यही मेरे पति हैं, है ना। तो वो गुणों पर विचार कर रहे हैं, है ना, तो गुणों पर विचार कर रहे हैं लक्ष्मी जी, तो क्या देख रहे हैं कि किसी में धर्म है, किसी किसी में धर्म है, तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई ये मेरा पति बन सकते हैं, ये धर्म है इसमें, है तो धर्म का बड़ा विचार करते हैं तो ये मेरे पति बन सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है दोष, दोष क्या है, न भूत सौहृदम, दूसरों के लिए सौहार्द नहीं है, दूसरों के लिए सौहार्द नहीं है, है कि वो जो है धर्म का पालन करे, है ना, कि सब प्राणियों का जो है की रक्षा हो, सब की धर्म का पालन करते हैं तो जो है अपना स्वयं जो है फल भोगना चाहते हैं, धर्म का पालन करके अपना स्वयं फल भोगना चाहते हैं, तो वो जो है दोष जो है उनको दिखाई दे रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि मतलब गुण दिखाई दें, जिस व्यक्ति में गुण दिखाई दे कोई भी दोष ना हो तो उसको अपना वर चुनेंगे। तो लक्ष्मी जी जो है सब में विचार करती हैं, इतनी सभा, ये सब पूरी सभा यहाँ बैठे, कितने देवता असुर गंधर्व सब बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी जो है एक एक मर जो विचार करती हैं, तो किसी से बोलती नहीं है, विचार करती हैं, देखो इनमें धर्म तो है लेकिन दूसरे प्राणियों में दया नहीं है, है ना, तो फिर ये मेरे पति नहीं बन सकते। फिर दूसरा त्याग है क्वचित, किसी के अंदर त्याग है तो बड़ा त्याग है, लेकिन क्या है तत्र न मुक्ति कारणम, त्याग तो बहुत कर रहे हैं लेकिन तो अभी भौतिक संसार से मुक्ति का जो है वो विचार नहीं कर रहे हैं कि हमेशा के लिए मुक्ति, है ना, तो त्याग करके भी जो है वो चाहते हैं क्या कुछ और ऊंचा भोग पाना चाहते हैं। तो जितने भी देवता हैं असुर गंधर्व हैं तो किसी में अगर त्याग है, ये बड़ा अच्छा गुण है तो बड़ा त्याग है, लेकिन फिर क्या है कि वो मुक्ति नहीं पाना चाहते हैं कि संसार बंधन से छूट जाए, है ना, तो वो फिर किसी में देखते हैं बल वीर्यम, बड़ा बल है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ना अज वेग निष्कृतम, अज का मतलब है अजन्मा, अजन्मा मतलब काल, काल के वेग को रोकने की शक्ति नहीं है, तो बड़ा दोष है। बल तो है आपके अंदर, बहुत ज्यादा बल है, बहुत बलवान है, ये काल क्या होता है सबका बल नष्ट कर देता है, सबको नष्ट कर देता है, तो काल, काल के वेग को रोकने की शक्ति नहीं है, तो वो बल जो है ये भी बड़ा दोष है, आपके बल में बहुत बड़ा दोष है, है ना, आगे चलकर क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे, समय का काल का जो है वेग आएगा तो बूढ़े हो जाएंगे और जो है उस क्या होगा, शरीर क्षीण हो जाएगा, है ना, जो बहुत बड़े बड़े चैंपियन थे अभी क्या है उनका ऐसा है कि वो चाय का प्याला भी नहीं उठा पा रहे हैं। मोहम्मद अली जो है वो था चैंपियन था बहुत बड़ा, है ना, लेकिन अब वो क्या है वो चाय का प्याला भी नहीं उठा पा रहा है, तो क्या काल का वेग है, काल का वेग हर व्यक्ति के बल को नष्ट कर देता है, तो वो लक्ष्मी जी को जो है उसमें भी दोष दिखाई दे रहा है ना, तो वो जो है मतलब भगवान को एक मतलब कुछ समय के लिए मतलब भूल करके वो सोचती है कि अब जो है शुरू से मैं विचार करूं कि भाई मेरा पति कौन बन सकता है, तो कोई भी मेरा पति बनने योग्य नहीं है, है ना, फिर नहीं देती है गुण संगे वर्जित, अब कोई है जो गुणों की आसक्ति से वर्जित है, गुणों की आसक्ति से वर्जित, तीन गुणों से ऊपर है, लेकिन वो जो है वो क्या है नहीं देती हो, वो जो है उनके समान है नहीं, है गुणों की आसक्ति से वर्जित हैं लेकिन वो भी लक्ष्मी जी के वर होने योग्य नहीं है, है ना, जैसे चार कुमार हैं तो पांच साल की अवस्था में रहते हैं तो तीन गुणों से तो मुक्त हैं, चार कुमार तीन गुणों से तो मुक्त हैं लेकिन वो जो है लक्ष्मी के पति होने लायक नहीं, पांच साल की अवस्था में रहते हैं बच्चे, तो लक्ष्मी जी अपना जो है जो स्वयं अपना वर का चयन कर रहे हैं तो गुणों की दृष्टि से भी वो जो है अंत में कहां निष्कर्ष निकालेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि यही है भगवान विष्णु, यही है जो है मेरे वर होने योग्य, मेरे पति बनने योग्य, है ना, तो ये जो है मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि निष्पक्ष रूप से वो चाहे विचार कर रहे हैं कि कोई है क्या ऐसा जिसके अंदर कोई दोष ना हो, सब प्रकार से निर्दोष हो और गुणों सब प्रकार के गुण हो और एक भी दोष ना हो, तो कौन हो सकता है? तो वो जो है इस तरह से विचार करते हैं। तो जो है भागवत कथा जो है इसलिए बड़ी जो है गहरी है, बड़ी गहरी है। इसमें ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ घोषित कर दिया गया है तो कुछ उनके पक्ष के लोग होंगे तो उन्होंने जो है वोट दे दिया कि भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। तो बहुमत किसी को मिल जाता है तो वो जो है बन जाता है, पदाधिकारी बन जाता है, उसको बहुमत मिल जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति तो होगा जो कि उनका विरोधी हो, है ना। यहाँ भगवान विष्णु ऐसे हैं, है ना, कि वो लक्ष्मी जी जो है किसी के मत का विचार नहीं करते हैं, अपने स्वयं निष्पक्ष विचार कर रहे हैं कि अगर ये मेरे पति नहीं है तो मेरा पति और कौन हो सकता है, तो मेरा कोई पति हो नहीं सकता, उनके सेवा और कोई नहीं हो सकता। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम कथन अत्यंत सार गर्भित है। हम वास्तव में देखते हैं कि ऐसे कितने ही हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध तथा अन्य संप्रदाय वाले धार्मिक लोग हैं जो अपने अपने धर्मों का दृढ़ता से पालन करते हैं, किंतु वे सभी जीवों पर समभाव नहीं रखते। प्रभुपाद के तात्पर्य हैं ये शिक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि कथा की दृष्टि से तो अभी लक्ष्मी जी सोच रहे हैं, ये प्रभुपाद जो है शिक्षा की दृष्टि से तात्पर्य दे रहे हैं, है ना। और शिक्षा की दृष्टि से इस समय की हालत क्या है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अपने में धर्म के जो है बड़े कट्टर अनुयायी हैं, पक्के अपने धर्म के बड़े कट्टर अनुयायी हैं, लेकिन क्या देखा जाता है उनमें कि जीवों पर संभाव नहीं रखते। निस्संदेह अपने आप को बहुत धार्मिक तो कहते हैं किंतु बेचारे दीन पशुओं का वध करते रहते हैं, दीन पशुओं का वध करते रहते हैं, निर्दोष पशुओं का वध करते रहते हैं और धर्म की जो है अपना बड़ा समर्थन करते हैं कि हमारा ये धर्म है, है ना। तो क्या ऐसा धर्म जो है किस काम का, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने भी बड़ी निंदा की, है इस्लाम धर्म की बड़ी निंदा की, चांद काजी के सामने बड़ी निंदा की कि तुम्हारा धर्म जो है कितना दूषित है कि गोवध की भी अनुमति इसमें दी जाती है। तुम्हारे धर्म के जो अधिकारी हैं तो वे जो है कितने अधिक भ्रांत हैं, कितने अधिक भ्रांत हैं, कि इतना बड़ा जो है तुम लोग पाप करते हो। तो यहाँ पर न भूत सौहार्दम, दूसरे प्राणियों के प्रति जो है तुम्हारा सौहार्द नहीं है, है ना। तो सब वो आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, सब प्राणियों को अपने समान देखे, सुख और दुख जो है जैसे अपना सुख दुख है तो उनका भी सुख दुख देखे। तो आप नहीं चाहते कि आपकी उंगली में थोड़ा सा भी कांटा लगे या चाकू लगे, थोड़ा सा भी कटे और गला काट रहे हैं, गाय का गला काट रहे हैं, दूसरे पशुओं का गला काट रहे हैं, है ना। तो कैसा धर्म है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद सिद्धांत के अनुसार तात्पर्य दे रहे हैं आगे। ऐसे धर्म का कुछ अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवतम 1:2-8 का कथन है, धर्म सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयहा नोत्पादे निर्दिरतिम श्रम एव ही केवलम। कोई अपने संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों को पालने में कितना ही पटु क्यों ना हो, किंतु यदि उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती तो उसके द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का पालन समय का अपव्यय मात्र है। श्रम एव ही केवलम, श्रीमद् भागवत कहता है कि केवल परिश्रम है, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, बहुत धर्म का पालन करते हैं, है ना, उसके बड़े पक्के नियम आप जो है कर रहे हैं, तो परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, बड़ा परिश्रम होता है, ये करना ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना, है ना। लेकिन एक इतना बड़ा दोष है तुम्हारे धर्म में, दूसरे प्राणियों की हिंसा करते हैं और अपने खाने के लिए, अपने जीव की तृप्ति के लिए दूसरे प्राणी में हिंसा करते हैं, तो भगवान की कथा में कैसे रुचि पैदा होगी। और धर्म का पालन करने से अगर भगवान की कथा में रुचि नहीं पैदा हुई, विश्वक्सेन कथा सुया नोत पादित यदि रतिम, अगर रति नहीं हुई भगवान की कथाओं में, तो श्रम ए भी केलम, तो जितना भी धर्म आपने किया हाँ, एक साल किया, 10 साल किया, 50 साल किया, 100 साल किया, सब परिश्रम मात्र है, कुछ भी फायदा नहीं है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को वासुदेव से प्रेम करने की भावना विकसित करनी चाहिए। वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। भक्त का लक्षण यही है कि वो हर एक का मित्र होता है। सुहृदम सर्वभूतानाम है ना, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिलक्षति है ना। तो ये जो है भगवान है, ऐसे भगवान ही ऐसे हैं क्या कि सब प्राणियों के सुहृद हैं, और भगवान को ऐसा जान करके व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। हाँ, तो लक्ष्मी जी जो है अगर विचार करते हैं कि कौन मेरा पति बनने योग्य है, तो केवल एक भगवान है, सबके हृदय में निवास करते हैं, सुहृदम है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त धर्म के नाम पर बेचारे पशुओं का वध नहीं होने देगा। बनावटी धार्मिक पुरुष तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के भक्त के बीच यही अंतर होता है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हम देखते हैं कि अब इसमें जो श्लोक के चार बिंदु हैं, चार बिंदु, पहला बिंदु तो धर्म क्या है, तो तात्पर्य प्रभुपाद ने धर्म की बात करी है ना, और तीसरा बिंदु है क्या, बल, किसके पास बल है लेकिन काल के सामने उसका बल नहीं चलता। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, तो दो बिंदुओं पर प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया। हम देखते हैं कि इतिहास में अनेक महान वीर पुरुष उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे भी क्रूर काल के हाथों से बच नहीं पाए। यहां तक कि सबसे बड़ा वीर पुरुष भी जब भगवान श्री कृष्ण काल रूप में आते हैं तो श्री भगवान की शासन शक्ति से बच नहीं सकता। इसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। श्री भगवान मृत्यु रूप में प्रकट होकर वीर पुरुष की तथा कथित शक्ति को छीन लेते हैं। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप भी अपने आप को नहीं बचा पाया। जब उसके समक्ष नरसिंह देव काल रूप में प्रकट हुए, किसी की भौतिक शक्ति या पराक्रम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के सामने शून्य है ना। तो अगर बल की दृष्टि से देखा जाए तो भी भगवान विष्णु ही जो है एकमात्र ऐसे बलवान है कि काल उनकी शक्ति को छीन नहीं सकता। काल के ऊपर जो है काल उनके ऊपर शासन नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी जी के जो पति हैं एकमात्र विष्णु ही हैं। जिस प्रकार से भी वो सोचती हैं, तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। और इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। धर्माचारी तो अनेकों हैं, धर्माचारी तो अनेकों हैं, पर सर्वभूत प्रति प्रेम नहीं। धर्माचारी तो अनेकों हैं पर सर्वभूत प्रति प्रेम नहीं। त्याग तो है अनेकों में, त्याग तो है अनेकों में, पर त्याग तो मुक्ति हेतु नहीं, पर त्याग तो मुक्ति हेतु नहीं। कई सूर महावीर हैं, कई सूर महावीर हैं, पर हैं तब सब काल के वशीभूत। कई सूर महावीर हैं पर हैं सब काल के वशीभूत। आसक्ति रहित महात्मा तो रहते द्वितीय भाव स्थित। अब जिनमें आसक्ति भी नहीं है तो भी जो है वो दूसरे भाव में रहते हैं, तो लक्ष्मी जी उनको अपना पति नहीं बना सकती, वो दूसरे भाव में रहते हैं है ना। तो यहाँ ये इसका जो है ये कुछ हमने हिंदी पद्यानुवाद दिया। अब इसको भी समझें कि जो पहला बिंदु है वो क्या है, धर्म का है ना। तो धर्म है तो वो कैसा है धर्म उनका, कि वो दूसरे प्राणियों के प्रति उनकी जो है दया नहीं है, दूसरे प्राणियों के प्रति दया नहीं है। तो धर्मी लोग या कर्मी लोग शुक्राचार्य, जैसे शुक्राचार्य हैं तो भौतिक सुविधाओं में रुचि रखते हैं है ना। असुरों के पुरोहित हैं, असुरों के पुरोहित हैं शुक्राचार्य, तो क्यों अपने धर्म का पालन करते हैं, पुरोहिताई क्यों करते हैं, उनको भौतिक सुविधाएं चाहिए, भौतिक जीवन की सुविधाएं चाहिए, इसलिए धर्म का पालन करते हैं। तो दूसरे प्राणियों के प्रति सौहार्द नहीं, असुरों के पक्ष में कार्य कर रहे हैं, असुरों की रक्षा करते हैं है ना। और धर्म जैसे परशुराम जी को भी अगर देखा जाए तो परशुराम जी भी धर्म का पालन करते हैं, उन्होंने जो है अधर्मी क्षत्रियों का बहुत विनाश कर दिया है ना। तो परशुराम जी तो उनको भी कहते हैं भाई धर्म तो उनका बहुत ज़्यादा, उनके अंदर धर्म है, लेकिन न भूत सौहृदम लेकिन वो सौहार्द नहीं है, 21 बार क्षत्रिय राजाओं का वध कर दिया, अब जो उनके बच्चे हो रहे हैं उनको भी मार रहे हैं। हाँ, जो बच्चे हो रहे हैं तो बच्चे पैदा होते हैं तो उस मार डालते हैं, है ना, तो ये भी जो है क्या है, एक बहुत बड़ा दोष है। फिर दूसरा दोष क्या है, त्याग है, मुक्ति का कारण नहीं है, है ना। तो त्याग क्या है, जैसे दक्ष हैं तो बहुत दान करते हैं, जो शिव जी के ससुर दक्ष का वर्णन आता है तो बहुत दान करते थे, लेकिन मुक्ति में उनकी रुचि नहीं, मुक्ति में उनकी रुचि नहीं है, है कि संसार बंधन से मुक्त हो, है ना, भोगों में रुचि है ना। तो ये है, या शिवी राजा शिवी को भी जो है बड़ा त्यागी माना जाता है, कि उनकी परीक्षा के लिए कबूतर और एक बाज आता है, तो कबूतर जो है भाग रहा है और बाज उसके पीछे आ रहा है, तो कबूतर ने उनकी शरण ले ली, उनकी गोद में बैठ गया, तो बाज बोला कि आप उसको छोड़ दिए, मैं तो भूखा हूँ और मुझे जो है भोजन चाहिए, ये मेरा भोजन है, आप इसको छोड़ दीजिए। तो महाराज शिवी ने कितना त्याग किया कि कबूतर के भोजन का जो है अपना शरीर का मांस काट काट करके दे रहे हैं, है ना, और इतना शरीर का मांस उन्होंने काट दिया, तराजू में तोला तो कबूतर फिर भी भारी रहा, तो अपना सिर भी काटने के लिए तैयार हो गए, इतना त्याग है राजा शिवी, है ना। लेकिन तो अभी वो मुक्ति का कारण नहीं है, मतलब वो उन्होंने क्या प्राप्त किया, स्वर्ग प्राप्त किया, तो त्याग के द्वारा स्वर्ग ही प्राप्त किया, तो मुक्ति का कारण नहीं है। तो ये भी जो है त्याग तो किसी के अंदर है, लेकिन इतना दोष भी है कि उससे वो मुक्ति नहीं पाए। और फिर बल, जैसे बल है तो किसी के अंदर बल बहुत है, शुंभ और निशुंभ जैसे बहुत असुर हुए हैं, लेकिन काल के वेग में जो है क्या है, नष्ट हो गए, उनका बल भी नष्ट हो गया, वो भी नष्ट हो गए, है ना। तो कार्तवीर अर्जुन बहुत शक्तिशाली थे, कार्तवीर अर्जुन भी बहुत शक्तिशाली थे, है ना, लेकिन परशुराम जी ने फिर उनका वध कर दिया, है ना। तो बल तो बहुत लोगों में हुआ और बहुत बलवान हुए लोग, लेकिन काल के वेग से जो है क्या हो गए, सब नष्ट हो गए, है ना। और विरक्त है, जैसे बहुत विरक्त हैं, गुड़ संग वर्जिता, तीनों गुणों से वर्जित हैं, लेकिन वो द्वितीय हैं, अपने सदृश नहीं, नहीं हैं। तो हमने बताया ना चार कुमार, ये चार कुमार हैं तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो सबसे बड़े पुत्र हैं, लेकिन हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, तो 5 वर्ष की अवस्था में वो क्या पति बन ही नहीं सकते किसी के, किसके पति बनेंगे 5 वर्ष की अवस्था में। तो लक्ष्मी जी ऐसे देखती हैं कि कुछ ऐसे भी हैं कि बड़े ने तीन गुणों से ऊपर उठ गए हैं, लेकिन तो भी वो जो है लक्ष्मी जी के पति बनने योग्य नहीं है, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की, और श्री भगवान ने कहा, मैं जो पहले अध्याय का श्लोक संख्या 36, जिसकी व्याख्या में हमने जो है कुछ बातें लिखी हैं कि भगवान का नाम माधव, अर्जुन जो है भगवान से जब बात करते हैं तो माधव के नाम से पुकारते हैं, है ना। सुजनम ही कथम हत्वा सुखना श्याम माधव, कि हे माधव अपने सुजनों की हत्या करके हम कैसे सुखी होंगे। तो माधव नाम की व्याख्या में जो मैंने लिखा है, माधव माँ का अर्थ है लक्ष्मी तथा धव का अर्थ है पति, इस प्रकार माधव का अर्थ हुआ लक्ष्मी के पति। तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के श्लोक 8, 8, 9 के तात्पर्य में लिखते हैं, वे लक्ष्मी भगवान की संपत्ति हैं, उन्हीं के द्वारा भोग्या हैं। यदि कोई धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा का इच्छुक है तो उसे चाहिए कि वो उन्हें नारायण के साथ रखे, क्योंकि वे स्वभाव से भगवत परा हैं, भगवत परा यानी भगवान के आश्रित हैं, है ना। जो भक्त सदैव नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, नारायण परायण, जो नारायण परायण होते हैं उन्हें निश्चय ही धन की देवी की कृपा प्राप्त होती है, किंतु जो भौतिकतावादी उन्हें अपने भोग के लिए प्राप्त करना चाहते हैं वे निराश होते हैं। उनकी यह नीति ठीक नहीं है, उनकी यह नीति ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ सुप्रसिद्ध असुर रावण रामचंद्र को लक्ष्मी अर्थात सीता जी से विहीन करके विजयी बनना चाहता था। श्री राम की लक्ष्मी जो सीता है उसको भोगना चाहता है, श्री राम से अलग करके सीता को भोगना चाहता है, किंतु परिणाम उल्टा निकला। भगवान रामचंद्र ने निस्संदेह सीता को बलपूर्वक ले लिया और रावण अपने समूचे साम्राज्य सहित विनष्ट हो गया। धन की देवी सबके लिए जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं काम्य हैं, किंतु मनुष्य को यह समझना चाहिए कि धन की देवी केवल भगवान की ही संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति धन की देवी का तब तक कृपा पात्र नहीं बन पाता जब तक वो उनकी और परम भोक्ता भगवान दोनों की स्तुति नहीं करता, है ना। तो हम लोग पूजा करते हैं तो लक्ष्मी नारायण लक्ष्मा लक्ष्मी को नारायण के साथ रख करके पूजा करते हैं, सीताराम तो सीता को राम के साथ रख करके पूजा करते हैं, राधा कृष्ण तो राधा को कृष्ण के साथ रख करके पूजा करते हैं। आगे श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णन हुआ है, ये भी चल रहा है ना 8वें स्कंद 8वां अध्याय, कि क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी देवी ने श्री कृष्ण के अंदर ऐसे कौन से गुण देखे जिनके कारण उन्होंने समस्त देवताओं और असुरों को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाया, है ना। तो इसमें 6 गुणों की चर्चा की है, उनमें से इस श्लोक के 2 गुण हैं। तो एक तो है वास्तविक धर्म, है अन्य जीवों पर दया ना दिखाने से व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। अन्य जीवों पर दया ना दिखाने से व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण वास्तव में सभी प्राणियों के प्रति दयालु हैं। गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण को समस्त प्राणियों के प्रति दयालु समझता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के समान समस्त प्राणियों का मित्र कोई भी नहीं हो सकता। क्या श्री कृष्ण के समान समस्त प्राणियों का मित्र कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि वे परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में रहते हैं। जीव किसी भी योनि में, यहां तक कि सूअर की योनि में भी क्यों ना जाए, श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में फिर भी उसके साथ रहते हैं। श्री कृष्ण के अंदर दया का यह वास्तविक गुण देखकर ही लक्ष्मी जी ने उन्हें अपना पति बनाया। अब बल का विचार, जिस प्रकार अन्य जीवों पर दया न दिखाने से धर्म नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार अन्य जीवों पर दया न दिखाने से धर्म नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार काल के प्रभाव से व्यक्ति का बल भी नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जिसका बल मृत्यु के सामने नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, अर्थात मैं मृत्यु के रूप में आकर व्यक्ति का संपूर्ण बल छीन लेता हूं। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के श्लोक संख्या 8, 8, 21 के तात्पर्य में लिखते हैं, आज का जो तात्पर्य मैंने पढ़ा, भगवान मृत्यु के रूप में वीर पुरुष की तथा कथित शक्ति को छीन लेते हैं, यहां तक कि हिरण्यकश्यप भी अपने को नहीं बचा पाया जब उसके समक्ष नरसिंह देव काल के रूप में प्रकट हुए। किसी की भी भौतिक शक्ति या पराक्रम भगवान की शक्ति के सामने शून्य है। क्या किसी की भी भौतिक शक्ति या पराक्रम भगवान की शक्ति के सामने शून्य है। इति इस प्रकार लक्ष्मी जी ने श्री कृष्ण के अंदर बल का ये वास्तविक गुण देखकर ही उन्हें अपना पति बनाया, है ना। तो कुछ चर्चा हमने इस श्लोक के संबंध में की है। तो 4 बातें जो है यहां लक्ष्मी जी अपने स्वयंवर के समय विचार कर रहे हैं, है ना। तो कन्या जो है को जब स्वयं अपना वर चुनने का अवसर दिया जाता है तो वो कन्या इतनी योग्य होना चाहिए कि स्वयं चुने वर, है ना। आजकल की जो कन्याएं अपना स्वयं वर चुनती हैं जिसे कहते हैं लव मैरिज, है ना, तो वो इंद्रिय तृप्ति के आधार पर चुनती हैं और फिर आगे चल करके जो है बड़ा कटु परिणाम होता है, है ना। तो सामान्यतः वर को अपनी पत्नी चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता और कन्या को अपना पति चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि वर और वधु दोनों क्या हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के में आ सकते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर लड़का लड़की को चुनेगा, लड़की लड़का को चुनेगी, तो आगे चल करके सब जो है परिणाम कटु होंगे, है ना। तो आजकल जैसे ये स्वतंत्रता दी जाती है लड़की लड़कियों को कि जो है स्वतंत्र रूप से जो है घुलें मिलें एक दूसरे से, और इस तरह से कोर्ट मैरिज करें, लव मैरिज करें, है ना। तो वो सब जो है क्या होता है, ये अशांति समाज में बहुत अशांति पैदा होती है ना। तो सामान्यतः जो कन्या के जो माता पिता होते हैं और जो उनके ऊंचे अधिकारी होते हैं, वो अपने पुत्र के लिए, लड़के के लिए है कन्या चुनते हैं, और कन्या के जो बड़े होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो अपनी कन्या के लिए वर को चुनते हैं। और ऐसा भी होता है कि लड़की का जो है जिस लड़के के साथ विवाह हो रहा है उसने देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं उसने, है ना। जब विवाह हो जाता है, विवाह के बाद जब मिलते हैं तब एक दूसरे को देखते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो ये सब जो है मतलब धार्मिक रीतियां हैं, हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को अगर वर चुनने का अधिकार दिया गया तो वो इतनी योग्य हैं कि वो इंद्रिय तृप्ति के आधार पर नहीं चुन रही हैं वर को, गुणों के आधार पर चुन रही हैं कि किसमें कैसे, है ना। तो भगवान में ही जो है ऐसे गुण हैं जो कि लक्ष्मी जी हैं जो है उनके साथ रहेंगी और उनको पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी, है ना। तो इस तरह से जो है लक्ष्मी जी विचार करती हैं। तो श्रीमद् भागवत में जो है इस तरह की जो कथा है, तो इससे जो है भगवान का जो है नए प्रकार से गुणगान हो रहा है, भगवान के गुणों का वर्णन अलग अलग प्रकार से हो रहा है। एक प्रकार ये भी है, एक ये भी प्रकार है कि भगवान की तुलना जो है सब लोगों के साथ की जा रही है, है? और एक गुण को लेकर के भी जो है, किसी भी एक गुण को लेकर के अगर तुलना की जाती है भगवान के साथ किसी भी देवता हो चाहे असुर गंधर्व, तो वो नहीं है, एक भी गुण नहीं है भगवान के जैसा, किसी में एक भी गुण नहीं है ना। और भगवान जिस प्रकार से निर्दोष हैं, तो ऐसा कोई निर्दोष भी नहीं है कि कोई दोष ना मिले, है ना। तो भगवान ही एक यात्रा से हैं जिनमें एक भी दोष नहीं है, है ना। बाकी सब में जो है दोष ही दोष भरे हुए हैं, है ना। जब लक्ष्मी जी ने चुन लिया भगवान को पति के रूप में, अपना पति के रूप में वरण कर लिया, है? तो जितने देवता लोग थे, ऋषि महर्षि, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है जय जयकार की, फूलों की वर्षा की, है ना। वो आगे वर्णन आएगा, अभी कथा चल रही श्रीमद् भागवत में, यहाँ आगे वर्णन आएगा कि है खूब जो है स्तुतियाँ की भगवान की और भगवान का गुणगान किया, है ना। और लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ी उन देवताओं के ऊपर, तो उनके अंदर भी जो है भगवान जैसे बहुत से जो है गुण आ गए। और जो असुर लोग थे वो प्रसन्न नहीं हुए, हैं, वो जो है रुष्ट हुए और उनके अंदर ईर्ष्या पैदा हुई और अपनी जो है दुर्भावना दिखा रहे हैं, है ना। तो उनके जितने गुण थे सब नष्ट हो गए, है ना। तो लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ती है हमारे ऊपर जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, और भगवान ने भी उनको, लक्ष्मी जी को अपने वक्ष में स्थान दिया, तो भगवान के वक्ष में निवास करती हैं। तो अगर भगवान का हम गुणगान करते हैं, भगवान के सामने भगवान का जो है हम जो है करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी देख करके प्रसन्न होती हैं, तो लक्ष्मी जी कृपा दृष्टि अपने आप मिल जाती है, तो लक्ष्मी जी कृपा दृष्टि अपने आप मिल जाती है। तो सौभाग्य की देवी हैं, धन की देवी हैं, है ना। तो लक्ष्मी जी के अंदर जो है सब प्रकार का जो है हमें सौभाग्य और संपत्ति प्राप्त होती है। और इस कथा के द्वारा जो है जो भक्त लोग हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो लक्ष्मी जी भी जो है अपनी बुद्धि से विचार कर रहे हैं, और भगवान के समान जो है कोई नहीं, मतलब हाँ निकला, भगवान के समान कोई नहीं निकला। इस प्रकार से जो है ये कथा है श्रीमद् भागवत की। अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ विचार, कुछ मंथन, चर्चा। अभी उठ के मत जाइए, ठीक है? तो ये भी अमृत है, जैसे समुद्र का मंथन किया गया तो उससे जो है अमृत निकला, उसी प्रकार से कथा का जब मंथन किया जाता है तो प्रश्न निकलते हैं, अच्छे प्रश्न बनते हैं, या कोई समीक्षा हो तो वो सब जो है अमृत, कथा का अमृत है। आपने कथा सुना? जी बोलिए।
कृष्णा जी दंड प्रणाम, बहुत अच्छा किया। हमारा प्रश्न ये है कि जीवों को मुक्ति, जैसे आपने बोला कि हम लोग का तो बुद्धि है नहीं और कुछ ना कुछ गलती होती रहती है, तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी?
मुक्ति कैसे प्राप्त होगी?
दोष मुक्त कैसे होंगे? दोष मुक्त भी कैसे होंगे?
दोष मुक्त कैसे होंगे? अगर हम जो है भगवान का गुणगान करते हैं, अगर हम श्रवण करते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, है ना, तो क्या होता है? नष्ट प्राय सुभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप रोज जो है अगर आप सुनते हैं गीता और भागवत सुनते हैं, रोज भगवान की कथा, भगवान का गुणगान सुनते हैं, तो आपके हृदय के अंदर अभद्र जो है नष्ट होते हैं, है ना। तो इसमें बताया आप सुनते हैं तो अभद्र नष्ट होते हैं, हैं? लेकिन दूसरी जगह ये भी बताया गया है कि श्रृणवता स्व कथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ है भद्राणी विधुनोति सताम, कि जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरी कथा सुन रहा है तो उनको मौका मिलता है हृदय में प्रवेश करने का और वो जो है धुलाई करने का, तो भगवान आपके हृदय की धुलाई करते हैं। हरि बोल। तो जो है भगवान की कथा सुनने में खो गया तो भगवान जो उसके हृदय के अंदर क्या करते हैं, विधुनोति सुहृत सताम, तो अभद्राणी विधुनोति, तो अपने हृदय के अंदर जो अमंगल है, अशुभ हैं, अनर्थ हैं, उनको भगवान धोते हैं, तो आपकी धुलाई अपने आप होती है, आपको पता नहीं चलता, आप कथा सुनने में लगे हैं और धुलाई अपने आप हो रही है। भगवान जो है उस समय मौका मिलता है कि ये जो है कथा सुनने में लगा हुआ है तो धुलाई करते हैं, है ना। प्रविष्टा करण रंध्र ने स्वानाम भाव सरोरुहम, तो भगवान ही जो है कानों के क्षेत्र से प्रवेश करते हैं जब कथा सुनते हैं, तो कथा भगवान की जो कथा है ना, तो ये भी भगवान ही है, कथा के रूप में भगवान ही है, कान में प्रवेश करते हैं, कान के छिद्र से हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रविष्टा करण रंध्र ने स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण, तो हृदय के अंदर जो है भगवान समलम धुनोति, जितना भी अशुद्ध है वो सब धो डालते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है? नष्ट प्राय सुभद्रे सुनित्यम भागवत सेविया, भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर भवती नैष्ठिकी, तो भगवान के चरणों में नैष्ठिकी भक्ति आ जाती है। नैष्ठिकी भक्ति आप सुनते हैं तो आपके हृदय के अभद्र नष्ट होते हैं, तो आपकी भक्ति नैष्ठिकी भक्ति में निष्ठा हो जाती है ना। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप हृदय को अगर शुद्ध करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, तो क्या करोगे? क्या साबुन खाओगे? आप शरीर को तो साफ करते हो साबुन लगा करके, क्या साबुन खाओगे हृदय को साफ करने के लिए? तो क्या तरीका है? कथा सुनो ना। तो हृदय का साबुन ये है, आप भगवान की कथा सुनते हैं तो कथा जो है आपके हृदय को शुद्ध करती है ना, या कथा के रूप में भगवान ही आपके कानों के क्षेत्र से हृदय में प्रवेश करते हैं, सफाई करते हैं, है ना। और फिर प्रेम प्राप्ति के लिए जो है आगे चल करके और क्रम से जो है आपको जो है उन्नति होती, जब तक कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होता है ना। तो ये भगवान की कथा है, ये हमेशा सुनना है और हमेशा सुनाना है ना, तो भगवान का स्मरण करना हमेशा। तो इसमें जो है कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है कि आप जो है इसके लिए कुछ और आप करें, है ना। अगर एक कार्य करते हैं तो सब कार्य अपने आप होते हैं, एक ही साधे सब सदै और सब साधे सब जाए। अगर आप सोचते हैं मेरे अंदर ये दोष है, इसको दूर करूं, ये दोष है दूर करूं, तो हजारों दोष हैं, आप कहां तक दूर करेंगे, है ना। लेकिन एक कार्य करते हैं, है? आप अगर श्रवण करते हैं, है ना, नित्यम भागवत सेवया, एक कार्य करते हैं तो सभी अभद्र नष्ट होते हैं, सभी प्रकार के दोष नष्ट होते हैं, है ना। भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर भवति नष्ट तदा रजस तमोभावा काम लोभादयसि। और आपको भी दिखाई देगा, आपको भी पता चलेगा कि आप सुनते हैं तो सुनते सुनते क्या होता है, रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं अब आपके ऊपर जो है वो चित्त में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। चित एत अनाविद्धम स्थितम सत्व प्रसिद्धति, सत्वगुण में आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से श्रवण करते हैं भक्तों की संगति में तो चित्त जो है सत्वगुण में स्थित होकर के प्रसन्न हो जाता है। रजोगुण तमोगुण के भाव आते हैं लेकिन वो व्यथित नहीं करते चित्त को। पहले रजोगुण तमोगुण के भाव आते हैं तो चित्त व्यथित हो जाता है, लेकिन जब आप नित्यम भागवत सेविया करते हैं, रोज भागवत श्रवण करते हैं तो क्या होता है, अब आते तो हैं वो विचार, काम लोभ ये सब विचार तो आते हैं आएंगे, लेकिन उनका जो है अब वो इतना प्रभाव नहीं पड़ता आपके चित्त में, चित्त अनाविद्ध रहता है, चित्त को वेध नहीं पाते। जैसे बाण होता ना, तो जब शरीर में बाण लगता है वेध देता है शरीर को, तो फिर व्याकुल हो जाता है व्यक्ति। लेकिन कोई बाण लगे और शरीर को वेध ना पाए तो फिर जो है इतनी दिक्कत नहीं होती। तो रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं वो बाण की तरह हैं, काम क्रोध लोभ ये बाण की तरह चित्त को वेध देते हैं, है ना। लेकिन वही जो है रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं आते हैं, लेकिन आपका चित्त जो है इतना मजबूत हो जाता है कि वो बाण जो है घाव पैदा नहीं कर पाते, है ना। तो काम बाण, क्रोध का बाण, लोभ का बाण, ये सब जो है रजोगुण तमोगुण के भाव हैं, बाण लगते हैं, है ना। तो आप नित्यम भागवत सेविया करते हैं तो आपका जो चित्त है वो इतना स्वस्थ हो जाता है कि बाण भी जो है लगते हैं लेकिन वेध नहीं पाते। तो इस तरह से जो है आप उन्नति करते हैं, है ना। ठीक है,
हरे कृष्ण प्रभु जी।
जी
हरे कृष्ण।
कहाँ पर है?
धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।
इधर
प्रभु जी, एक इतना सुंदर प्रसंग, बड़ा मन को बहुत भा रहा था। एक छोटा सा मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आप बता रहे थे कि जब कहा कि जिसको जो चाहिए वो ले ले, देवता को बोला लड़ेगा कोई नहीं, तो वहां राक्षस भी थे, तो जो उनके मन में आया उन्होंने ले लिया, तो उन्होंने कोई उस पर आपत्ति नहीं करी, ऐसा ही कुछ?
हाँ, भगवान ने बताया कि अमृत, क्योंकि तुम्हें अमृत प्राप्त करना है, अमृत प्राप्त करना है, तो ये दूर दृष्टि है, दूर की दृष्टि से, है ना। क्योंकि अगर ऐसे इसी में मतलब अगर लड़ना झगड़ना होगा तो आपका लक्ष्य जो है फिर आपको नहीं मिलेगा। तो लक्ष्य को ध्यान में रख करके आपको जो है चलना है, ठीक है ना। अगर मान लो आपको 1 करोड़ रुपए का अगर फायदा होने वाला है ना, तो मान लो 10 रुपए 20 रुपए का जो है आप झगड़ा करते रहोगे तो आप पहुँच नहीं पाओगे उस लक्ष्य तक, है ना। और अमृत के लिए भगवान ने फिर ये नीति बताई, उनको ना मिले अमृत तुमको मिले अमृत, भगवान ने नीति बताई। अभी तुम संधि करो, लेकिन संधि जो है ये अनित्य संधि है, अमृत प्राप्त करने के लिए, अमृत तुम्हें मिले उनको केवल परिश्रम मिलेगा, है ना। तो ये जो है नीति भगवान ने बताई, ठीक है। माता जी
हरे कृष्णा। प्रभु जी, लक्ष्मी जी तो भगवान की नित्य संगनी है, हमेशा भगवान के साथ रहती हैं, तो फिर समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी क्यों नहीं?
हाँ, इनका प्रश्न है माता जी का कि लक्ष्मी तो नित्य संगनी है भगवान की, तो समुद्र मंथन से कैसे निकली? तो समुद्र मंथन से कैसे निकली, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि लीला है। भगवान भी जो है मतलब अवतार लेते हैं और लक्ष्मी जी भी जो है अवतार लेती हैं, तो समुद्र मंथन से वो निकली और अब जो है उनको अवसर दिया गया कि अपना पति चुनो, है ना। अब यहाँ पर जो है चूँकि झगड़ा करना नहीं किसी को और सब लोग चाहते हैं, तो अपना पति चुनने खो, तो अपना पति स्वयं चुन रही हैं, तो इसमें जो है क्या है कि पूरा विचार करके चुन रही हैं, है ना, तो ये जो है लीला है, ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? इधर माइक। माइक है?
आप पूछें।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, समुद्र मंथन में पहले हलाहल निकला तो शिव जी ने ग्रहण किया, और जो बाकी जो गिरा हुआ था वो सांप बिच्छू ने खा लिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई भी चीज कोई भी ग्रहण करता है तो वो वन टाइम ही होता है ना, उसके बाद वो उसका प्रकोप।
हाँ, इनका प्रश्न है
कंटिन्यू
कि शिव जी ने वो विष जो है ग्रहण कर लिया, पी लिया, है ना, पर तो उसको भी जाने नहीं दिया, गले के नीचे नहीं जाने दिया, गले में धारण कर लिया, है ना। तो उनकी इतनी शक्ति है कि विष को उन्होंने ग्रहण कर लिया, और जो है कुछ बूंदें जो गिरी तो सर्प बिच्छू ने ग्रहण कर लिया, तो वो जो है वो विषैले जंतु हो गए। और भी विषैली कुछ औषधियाँ भी हैं, कुछ पेड़ भी हैं, है ना, औषधियाँ भी होती हैं, विषैली होती हैं, विष पैदा होता है ना। तो ये सब जो है ये भगवान की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि में ये सब जो है ये भौतिक सृष्टि है, तो इसमें ये सब जो है चाहे किसी भी कारण से हो लेकिन ये है कि ये रहने लायक नहीं है, यहाँ पर हर समय खतरा है, ठीक है ना। तो मुख्य बात यही है कि ये भौतिक सृष्टि है, ये जो है दुखों का स्थान है और यह मृत्यु का स्थान है, तो इसलिए जस्ट अच्छा तो यही है कि हम यहाँ से निकल जाएं, ठीक है ना। ये भगवान की सृष्टि के ऐसी है ही है, इस तरह से ये सब हुआ, ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? हाँ,
हरे
कृष्ण कुमार प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर प्रवचन के लिए। तो अक्सर देखा जाता है कि जब हम या भक्त लोग जब लक्ष्मीपति की उपासना करते हैं तो उनको लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, और शिव जी की उपासना करने से वो लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं।
हाँ, इनका प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि लक्ष्मीपति की आराधना करने से भी लक्ष्मी जी नहीं प्राप्त होती हैं। भगवान कहते हैं यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद् धनं सुने, कि धीरे धीरे उसका धन हरण कर लेता हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती, लक्ष्मी प्राप्त भी होती हैं। तो प्रभुपाद को जो है कितना संपत्ति प्राप्त हुई, और पहले उनको जो है बहुत दिक्कत थी, पैसे का बहुत अभाव था, कितना पैसा मिला कि बेशुमार, है ना। इसी प्रकार पांच पांडवों को भी जो है कितनी संपत्ति प्राप्त हुई भगवान के द्वारा। और युधिष्ठिर महाराज राजसु यज्ञ करना चाहते हैं, तो भगवान ने पूछा राजसु यज्ञ आप क्यों करना चाहते हैं, मैं तो आपके साथ हूँ, तो आपको तो सब यज्ञों का फल वैसे ही मैं दे दूंगा, तो आपको राजसु यज्ञ क्यों कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं राजसु यज्ञ इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ पूरी दुनिया के राजाओं को कि जो भक्त हैं आपके भक्त हैं उनके पास कितनी संपत्ति है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है अपने भक्तों को संपत्ति देते भी हैं अगर वो देखते हैं कि संपत्ति का जो है वो उपयोग करेंगे और भगवान की सेवा में करेंगे। लेकिन संपत्ति नहीं देते हैं या संपत्ति छीन लेते हैं तो भगवान क्यों संपत्ति नहीं देते हैं, छीन लेते हैं, अगर वो देखते हैं कि संपत्ति पाने योग्य नहीं है और इस संपत्ति के कारण इसकी भक्ति में बाधा पड़ेगी, तो इस तरह से जो है भगवान जो है संपत्ति नहीं देते हैं। लेकिन सुदामा जैसे भक्त होते हैं वो हर स्थिति में भगवान का गुण देखते हैं, संपत्ति नहीं दिया तो भी भगवान का गुण है और संपत्ति दिया तो भी भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा ही देखते हैं। अब सुदामा जी को पता नहीं चला कि भगवान ने कितना दिया, तो उनके हाथ में कुछ दिया नहीं है और वैसे ही विदा कर दिया। तो सुदामा जी ने मतलब क्या सोचा कि मुझे पत्नी ने तो भेजा था कि द्वारकाधीश के पास जाओ तुम्हारे मित्र हैं तो मैं संपत्ति देंगे, तो उन्होंने मुझे संपत्ति नहीं दी। तो क्यों संपत्ति नहीं दी? तो अपनी मतलब कृपा देखने की आदत होती है भक्त की, तो कुछ ना कुछ कारण उन्होंने बना लिया कि भगवान ने मुझे संपत्ति क्यों नहीं दी। तो ये सोच के नहीं दी कि ये ब्राह्मण जो है घमंडी हो जाएगा और मेरी भक्ति जो है छोड़ देगा, इसलिए नहीं दी। लेकिन जब आए घर में और देखा कि असीमित संपत्ति दी भगवान ने, तो फिर जो है उस तरह से भगवान की कृपा देखने, भगवान की ऐसी कृपा है। तो जो भक्त होते हैं तो वो क्या करते हैं, हर प्रकार से भगवान की कृपा देखते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमे क्षमाणो, कि भगवान की कृपा ही वो देखते हैं। भगवान ने अगर उनको धन दिया है तो भगवान की कृपा है, धन नहीं दिया तो भी भगवान की कृपा है। कुछ ना कुछ अपना कारण बना लेते हैं कि ये भगवान की कृपा ही है कि संपत्ति नहीं दी या संपत्ति दी, है ना। भुंजान ये बात नहीं कृतम विपाकम, और अगर भगवान की कृपा नहीं दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी अनिष्ट घटनाएं हो रही हैं कि भगवान की कृपा नहीं दिखाई दे रही, तो आत्मकृतम विपाकम, तो अपना ही जो है कि ये कर्म का दोष है, तो अपने को ही दोष दे दें। तो कोई संपत्ति मिले कुछ है, ना, तो भगवान की कृपा देखते हैं, और अगर कुछ अनिष्ट होता है तो भगवान का दोष नहीं मानते हैं, अपना दोष मानते हैं, है ना। भुंजान ए बात में कितम विपाकम हृदय फिर विदधन नमस्ते, हृदय से और वाणी से और शरीर से भगवान को नमस्कार ही करते हैं। जीवित यो मुक्ति पदे सदाए भाग, तो इस प्रकार से जो जीवन जीते हैं तो मुक्ति पद के वो अधिकारी हो जाते हैं, उसी प्रकार से जैसे पुत्र को पिता का उत्तराधिकार मिल जाता है। तो सबसे बड़ी संपत्ति तो क्या है, वो भगवान के धाम है जाना, तो वैकुंठ की प्राप्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। यहाँ तो जो है संपत्ति अगर होती भी है तो उसमें भी कई प्रकार की बाधाएं हैं, कई प्रकार के कष्ट मिलते हैं, है ना। तो यहाँ तो दुख ही ये दुख है, संपत्ति में भी दुख है और विपत्ति में भी दुख है, हर प्रकार से दुख है ना। तो सबसे बड़ी संपत्ति यही है, कि यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परममम, कि जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता, सबसे बड़ी संपत्ति यही है। तो गीता में भगवान जो है ये ज्ञान देते हैं, है ना। तो इसमें फिर क्या है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संपत्ति हो या विपत्ति हो, जबकि कई बार विपत्तियों में ही भगवान याद आते हैं। कुंती महारानी की इतनी विपत्तियों में ही हमें आप याद आते हैं। संपत्ति में क्या होता है, घमंड बढ़ जाता है, जन्म ऊंचे कुल में जन्म हुआ है मेरा, जन्म ऐश्वर्य या मेरे धन संपत्ति इतनी है, श्रुत और मेरे पास इतनी विद्या है, शिक्षा और स्त्री और सुंदरता, जिसका घमंड हो जाता है, है ना। तो अगर भगवान इन सब चीज़ों के बाद भी विपत्ति देते हैं तो फिर जो है घमंड नहीं रहता है, कि मैं इतना सुंदर हूँ या मेरी इतनी शिक्षा है, लेकिन क्या फ़ायदा है सुंदरता का, शिक्षा का, मुझे सब विपत्तियाँ मिल रही। तो विपत्तियों में अगर भगवान को हम याद करते हैं तो वो विपत्तियाँ ही संपत्ति है, है ना। तो भक्त लोग जो है मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं कि भगवान संपत्ति दें ना दें, उनकी इच्छा होती भी है संपत्ति पाने की और भगवान से मांगते भी हैं, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो भी उनके पास इतनी बुद्धि होती है, इतना विचार होता है कि भगवान ही तो एकमात्र रक्षा कर रहे हैं, और वही रक्षा करेंगे, नहीं तो क्या फ़ायदा, संपत्ति मिल जाए, देवता लोग संपत्ति दे देते हैं, है ना, लेकिन फिर उसमें रक्षा नहीं होती, उसमें और विनाश होता है, है ना। तो भगवान अगर देते हैं तो योग क्षेमम बहामि हम, योग क्षेम बहन करता हूँ। तो योग का मतलब संपत्ति देते भी हैं तो सुरक्षा भी देते हैं। सुदामा जी को संपत्ति दी, है ना, तो हाथ में संपत्ति नहीं दी, हाथ में संपत्ति देते तो रास्ते में कोई छीन लेता, लेकिन संपत्ति कितनी दी, उनके महल और सब जो है मतलब सब बन गए, और बहुत सैनिक भी हैं, सब सुरक्षा, पूरी सुरक्षा के साथ संपत्ति दी, है ना। किसी को संपत्ति मिल जाए 1 करोड़ रुपया लॉटरी खुल जाए तो अगले दिन उसकी हत्या हो जाएगी, उसके पास 1 करोड़ रुपया आ गया, अब रक्षा कैसे होगी। तो जो है भगवान अगर दें कुछ है तो उसके साथ साथ सुरक्षा भी दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, है ना, और नहीं तो और ज़्यादा हमारे लिए क्या हो गया, विपत्ति हो जाएगी और ज़्यादा खतरा हो जाएगा जीवन के लिए, संकट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।